चौथा जो पहाड़ है इसकी ये सीढ़ियां हैं मान मंदिर की। और ऊपर जाएंगे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तो मान मंदिर में जाएंगे। ये मान मंदिर का प्रवेश द्वार है और इसके अंदर आप प्रवेश करेंगे मानगढ़। और ये राधा मान बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर श्रृंगार रोज करते हैं, रोज उनका फोटो आता है व्हाट्सएप पे। ये बहुत ही निकट का श्रृंगार है राधा मान बिहारी लाल जी का। और इसकी दर्शन कीजिए। और मान बिहारी का दर्शन करते हुए हमको प्रणाम मंत्र बोलना है, बड़े प्रेम से बोलिए। देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधायिने मान मंदिर सौंध्याय मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमये नमस्ते रत्न भूमये। इसका अर्थ ऐसा है कि राधा रानी ने यहाँ पर मान लीला किया और इसलिए इस जगह का नाम मान मंदिर पड़ा। देवता और गंधर्व भी यहाँ पर आकर बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। हम बड़े ही नम्र हृदय से आपको प्रणाम करते हैं। तो ये है राधा मान मान बिहारी जी। ये जो जगह है ये चारों पर्वतों से सबसे अधिक उत्कट जगह है। यहाँ का जो भाव है समझना बहुत मुश्किल है, हम तो उसके योग्य नहीं है। बहुत कठिन और बहुत ही क्या कहते हैं गुप्त रूप का लीला यहाँ पर हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान राधा रानी को मनाते हैं, राधा रानी मान करती हैं और श्री कृष्ण भगवान उनको मनाते हैं। सखी बनकर मनाते हैं, मोर बनकर मनाते हैं, नाना प्रकार के छद्म रचाते हैं और रोती हुई राधा रानी को मनाते हैं। राधा रानी क्यों रोती है? हमारा जो क्रोध है उसको क्रोध कहते हैं, राधा रानी के रूपने को मान कहते हैं। क्या फर्क है उसके अंदर? हमारा क्रोध स्वार्थ में आधारित होता है, स्वार्थ के लिए होता है। हमारी कोई कामना पूर्ण नहीं होती है तो हमको क्रोध आता है। लेकिन राधा रानी मान करती है केवल कृष्ण को अधिक प्रेम करने के लिए, प्रेम की वृद्धि करने के लिए, प्रेम का विकास करने के लिए, कृष्ण को अधिक उत्कट प्रेम का अनुभव देने के लिए राधा रानी मान करती है। तो ये मान लीला का जो है ओरिजिनल चित्रपट है। देखिए आप राधा रानी का, राधा रानी रोटी हुई है और ललिता जी राधा रानी का हाथ कृष्ण के हाथ से मिलाने का प्रयास कर रही है, राधा रानी उसको मना कर रही है और रोट के बैठी हुई है। ये देखिए ये राधा रानी के मान लीला का वास्तविक चित्रपट है। कृष्ण भगवान यहाँ पर राधा रानी के चरण लेकर उनकी सेवा कर रहे हैं। कितना उत्कट भाव है उसके अंदर, कितना उत्कट भाव। तो मैं लीला बताऊंगा, पहले हम एक प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हे मान बिहारिणी, हमें मिथ्या अहंकार से मुक्त कर दीजिए। हर एक हमारी जो भावना है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, कुछ भी हमारे मन में नेगेटिव पॉजिटिव जो भावना आती है वो हम आपकी सेवा में लगाना चाहते हैं। सारी नकारात्मक भावनाओं को त्याग करना चाहते हैं, सारी सकारात्मक भावनाओं को केवल आप ही और आप ही के लिए सेवा में उनको प्रदान करना चाहते हैं। और जब भी आप हमारे अहंकार को चूर चूर करना चाहते हो, कुचलना चाहते हो, तब आप दिल से हमारे अहंकार को कुचल दीजिए। लेट मी बी रेडी टू गेट क्रश्ड जस्ट टू प्लीज यू। और फिर अभी हम आपको इसकी लीला बताते हैं। अभी राधा रानी के रूठने के कई कारण हैं और जैसे कि कृष्ण भगवान कभी रात में देर से आते हैं, ये कारण है। कृष्ण भगवान को राधा रानी डांस सिखाती है तो बड़े होशियार है, वो डांस सीखने में बहुत होशियार है। कभी 64 कलाएं 64 दिन में सीखी थी जाके शांतिवनी के आश्रम में, बहुत होशियार है। लेकिन राधा रानी का संग ज्यादा समय के लिए मिले इसलिए बार बार रॉन्ग कदम डालते हैं डांस का, है ना, जानबूझ के वो ऐसे गलती डालते हैं। तो राधा ने दोबारा सिखाती है, अरे कैसे मूर्ख हो तुम, दोबारा सिखाती है, फिर दोबारा गलत डालते हैं, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। फिर राधा रानी को समझ में आता है ये नाटक कर रहा है, मेरा समय व्यर्थ कर रहा है, तो रूठ जाती है। हाँ, तो एक बार बार रूट कर गई थी तो रास्ते देर से आए थे तो एक बार रूट रही थी तो वो यमुना पार जाकर बहुत रोई थी वहां पर, और मानसरोवर तैयार हो गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो लीला यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर एक लीला का स्वरूप ऐसा है कि परस्पर श्रृंगार लीला कहते हैं उसको, परस्पर श्रृंगार लीला, दोनों एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं, सब सखियां व्यवस्था करते हैं और दोनों एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। एक दूसरे का श्रृंगार लीला पूर्ण हुआ, राधा रानी पूरे श्रृंगार से तैयार हो गई, तो राधा रानी ने कहा अब मेरे श्रृंगार का वर्णन करो। तो कृष्ण को राधा रानी के सौंदर्य की तुलना करने के लिए कोई विषय ही नहीं मिला, चारों तरफ देखा कोई विषय दिखाई नहीं जिसकी तुलना की जाए। तो आकाश में देखा तो चंद्रमा, उस समय संध्या का समय था, चंद्रमा का उदय हो रहा था तो बड़ा सुंदर लग रहा था, उनको लगा कि ये उपमा सही है। तो उन्होंने कहा कि आपका मुखमंडल जो है चंद्रमा के समान है, किसी स्त्री को कोई पुरुष अगर कोई पत्नी को पति बता देगा तो पत्नी इतनी खुश हो जाएगी कि आज मेरे पति ने मेरे मुख कमल की चंद्रमा से तुलना की। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो गया, चंद्रमा की तुलना करने पर राधा रानी रूठ गई और कहने लगी आपने हमारी मुख कमल की तुलना चंद्रमा से की है, चंद्रमा के अंदर कितने दाग हैं, हमारे संदर्भ में कोई दाग नहीं, चंद्रमा का क्षय होता है पूर्णिमा के बाद, हमारे संदर्भ में कोई क्षय नहीं होता है, चंद्रमा के संदर्भ में घटौती बढ़ौती होती है, हमारा सौंदर्य केवल बढ़ते रहता है। दूसरा, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, हमारे सौंदर्य को कभी ग्रहण लगता नहीं। हाँ? उसके बाद में कहा चंद्र जो है वो पर प्रकाशित है, हम स्वयं प्रकाशित हैं, और चंद्रमा जो है ना वो व्यभिचारिणी कहा गया उसको, क्योंकि बहुत सारे सितारे उन पर डोरे डालते रहते हैं, हम सती हैं, सतीत्व की हम मूर्ति हैं, हम आपके सिवा किसी को नहीं चाहते, तो चंद्रमा का मन जो है वो मिश चंचल रहता है। ये सब बातें भी हम सहन कर सकते हैं, लेकिन एक बात सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो राइवल है प्रतिस्पर्धी चंद्रावली, उसका आधा नाम चंद्र है और उसकी तुलना आपने हमारे से की, हम तभी कतई तौर पर आपको माफ नहीं कर सकते। ऐसे बोलकर पैर जमीन पर पटका और चली गई वो पर्वत के ऊपर। तो ललिता जी को कृष्ण ने पुकारा, बहुत परेशान हो गए कृष्ण, अरे बाप रे कहां से कहां फंस गया मैं, क्या चाह रहा था, क्या बोला मैंने, देखो एक बात कभी भी गलत बोली ना उसका परिणाम क्या होता, देखो जबान को कभी भी ना विचार पूर्वक उपयोग करना चाहिए, भावना में आकर कोई बोलेंगे ना तो हमेशा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए भावना को रोक कर बुद्धि के सर पर विचार करके बोलना चाहिए कि कब किस समय क्या बोलना है, सोचा था क्या और क्या हो गया। हाँ, ललिता जी को बुलाया, ललिता जी जाओ उनको मनाओ, ललिता जी गई मनाने के लिए तो और ऊपर चढ़ गई, फिर कृष्ण के पास आई, कृष्ण बोला अरे क्या कर रही हो, जाओ मनाओ, तो और ऊपर चढ़ गई, फिर वापस आई, कृष्ण बोला जाओ उसको मनाओ, और ऊपर चढ़ गई, फिर ललिता ने गीत गाया आवत जावत हार गई री, तो मैं तो चुगान के गेम जैसी बन गई हूँ, कोई यहाँ ठुकराता है वहां ठुकराता है, मैं तो गेंद जैसी बन गई, फुटबॉल जैसी बन गई हूँ, चुगान चौगान की गेंद कहते हैं ब्रज में ना, एक शब्द है चौगान, चौगान यानी फुटबॉल जैसा होता है, उसको यहाँ से वहां फेंकते रहते, तो तुमने मुझे चौगान की गेंद बना दिया, और आखिर में वो शिखर पे जाके बैठ गई एकदम ऊपर। अभी वो बाद में ललिता जी कृष्ण को ऊपर लेके गए, तो चित्रपट जो है ना ये चित्रपट उसी है, ऊपर चोटी पर बैठ गई, वहां पर जाकर ललिता जी ने हाथ मिलाने का प्रयास किया, इधर से गई तो राधा रानी ने उधर देखा, उधर से लेके गई तो उधर देखा, महाराज जी का प्रवचन मुझे याद है 1986 का, वो बोल रहे थे कृष्ण केम फ्रॉम दिस साइड, राधा रानी लुक्ड ऑन दैट साइड, देन कृष्ण केम फ्रॉम दैट साइड, शी लुक्ड ऑन दिस साइड, हां कृष्ण केप्ट ऑन ट्राइंग एवरी टाइम एंड राधा रानी केप्ट ऑन लुकिंग अपोजिट साइड, नो इंटरेस्ट इन कृष्ण, ऐसा महाराज जी का प्रवचन है 1986 के पहली यात्रा वाला। तो वो शिला जो इसको वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो जो गुफा के अंदर वो शिला है जहां पर जाके वो रूठ कर बैठ गई थी। तो अभी ये जो गीत गोविंद है जयदेव गोस्वामी गोस्वामी महाराज, ये लीला का अवलोकन कर रहे हैं, अपने दृष्टांत में दर्शन कर रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, कृष्ण भगवान राधा रानी के चरणों में झुके हुए हैं फिर भी नहीं मान रही है, कृष्ण भगवान अपने मोर मुकुट को उतार कर उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं फिर भी नहीं मान रही है, फिर कृष्ण भगवान दो नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं और वो अश्रुओं से चरणों को धो रहे हैं तो फिर भी नहीं मान रही है, फिर अपना शीश उनके चरणों में स्पर्श कराते हैं फिर भी नहीं मान रही है, फिर उस चरणों के रज के अंदर वो लोटपोट हो जाते हैं, ही रोल्स इन द डस्ट अंडर द फीट ऑफ राधा रानी, फिर भी वो नहीं मान रही है, सपने में जयदेव जी को सहन नहीं हुआ, ये कैसा भी सकता है क्या? बड़े दिमाग उनका उष्ण हो गया और गंगा नदी में स्नान करने चले गए। लेकिन कृष्ण को गीत गोविंद ने ये बात तो बात का यकीन दिलाना था कि ये सत्य है। दिस इज नॉट इमेजिनेशन, जो आप देख रहे हो वो सत्य है। और मुझे गर्व है इस बात का कि इसका वर्णन किया जाए कि मैं राधा रानी के चरणों में सर झुकाता हूँ। तो वो चले गए, लिख नहीं पाए। कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उन्हें वो पंक्ति पूरी कर दी कि यस, हाँ, ये चरणों में झुकता हूँ, ये मेरा गर्व गौरव है जीवन का कि चरणों में झुकना। तो गीत गोविंद में जो जयदेव जी लिख नहीं पाए, वो स्वयं कृष्ण ने आकर उस पंक्तियों को पूरा किया है और इस बात को सिद्ध किया है कि हाँ, है जरूर हम गोलोकेश्वर, लेकिन झुकते हैं राधा रानी के चरणों में। फिर वो ललिता जी ने कुछ कहा कान में कृष्ण के, और वो भी चले गए, कृष्ण भी चले गए। पता नहीं अभी सस्पेंस हो गया, अभी क्या होने वाला है, सब कुछ तो हो गया, अभी आगे क्या होने वाला है। उतने में क्या हुआ, उतने में बता रहा हूं अभी क्या हुआ। उतने में एक मोर आया और वो मोर कुटी पे यानी यहां पर नाच करने लगा, सुंदर नाच करने लगा। तो ललिता जी तो नहीं थे वहां पर, बाकी साथियों ने कहा देखो तो कितना सुंदर मोर आया है, तो वो देखने को भी तैयार नहीं। तो मोर और उत्साह से नाच करने लगा, तो राधा रानी को देखने के लिए मजबूर थे, कम से कम देखो तो सही, अरे वो तो चला गया, तुम जिस पर नाराज हो वो नहीं है, वो मोर है, मोर मोर को देखने लगे तो थोड़ा टर्न हो गई। तो मोर को और उत्साह आया और नृत्य किया मोर ने, फिर राधा रानी बहुत खुश हो गई और मोर खुश हो गया और नृत्य करने लगा, उतने और मोर जुड़ गए उसको। उसके बाद में मोर का नृत्य इतना सुंदर हो गया, इतना सुंदर हो गया कि राधा रानी वहां से उतर गई, सीधे वहां पहुंच गई और उस मोर के साथ मोरनी बनकर नाच करने लगी, और इतना सखियां भी मिल गई उसे, और राधा रानी और वो मोर ने इतना सुंदर नृत्य किया, मोर को इतना उत्साह आया कि राधा रानी अपना मान छोड़कर वहां पर मेरे साथ नाचने के लिए आई, इतना सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया, आखिर में इस पोजीशन में आ गए। हाँ देखिए, ये पोज में जब आ गए तब राधा रानी को समझ में आया कि ये मोर और कोई नहीं है, कृष्ण ही है स्वयं। तब तक तो उनका मान मान सब खत्म हो गया था, है ना। तो ये जो आखिरी पोज है, इस आखिरी पोज में इतने निकट आ गए दोनों, तो राधा रानी को समझ में आया कि ये कृष्ण है, मुझे मनाने के लिए मोर भी बनने को तैयार है। तो ये वो पोजीशन है और ये वो चित्रपट है। ये चित्रपट मोरकुटी के मंदिर का विग्रह है, ये चित्रपट इसकी ही पूजा की जाती है। उसकी कहानी ऐसी है कि ये लीला मोरकुटी पे निरंतर चलती रहती है, ऐसा नहीं कि एक ही बार हुई है, अनंत बार वहां पर राधा रानी नाराज हो गई है, अनंत बार कृष्ण ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं राधा रानी को रिझाने के लिए, और राधा रानी यहाँ पर नृत्य करती है कभी फिर अकेले में, कभी क्या होता है कृष्ण भगवान आते हैं, राधा रानी आती है, मंद मंद हवा आती है, आंचल उड़ते हैं, आकाश में बादल आते हैं, मोर आते नाचने लगते हैं, तो मोर मोरनी का नृत्य देखते हैं दोनों बैठकर, एक लीला है। दूसरे में कभी मोर का भैंस पहनकर, मोरनी का भैंस पहनकर राधा रानी और कृष्ण नाच करते हैं। तीसरी लीला में अपने मोर अपनी मोरनियों को लेकर आते हैं और अपने मोर मोरनियों को नृत्य करने में प्रवृत्त करते हैं और उनका नृत्य जो है वो सब देखते हैं। और कभी स्वयं मोर का भेष नहीं पहनते हैं, स्वयं मोर बन जाते हैं, राधा रानी मोर नहीं बन जाती है और सब सखियां भी मोर नहीं बन जाते, सखा भी मोर बनते हैं और सब नृत्य करते हैं यहाँ पर। और इस मोर के नृत्य में एक विशेषता है, कौन से वाद्य बजते हैं इसके अंदर? मुरली, कंगन और पायल, बस केवल ये तीन वाद्य बजते हैं और इन वाद्यों के संगीत में इस अंदर मोर नृत्य होता है, अनंत प्रकार का मोर नृत्य यहाँ पर चलते रहता है। तभी ये फोटो की कहानी बताता हूँ, कुछ 100-200 साल के पहले एक बूढ़े अंधे बाबा थे, वो मोरकुटी में रहा करते थे, बड़े सिद्ध बाबा थे वो, बड़े प्रेम भक्त थे, अंधे थे लेकिन, तो उनको स्वप्न में राधा रानी ने इस मोर लीला का दर्शन दिया। तो बाबा तो अभी आप देखते ना, इसका मतलब ये होता है कि अंधा लोग भी स्वप्न देख सकते हैं, ये सत्य है, ब्लाइंड पीपल कैन सी द ड्रीम्स। तो राधा रानी ने दर्शन दिया और दर्शन किया बाबा ने, फिर राधा रानी ने उनको आदेश दिया कि आप इस चित्रपट निकालो हमारे जिला का, जैसे ये चित्रपट है, ये चित्रपट निकालो। तो वो कहता है मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे निकालूंगा, मैं आपको दिव्य शक्ति दूंगी, चिंता मत करना, आप संकल्प करना और बनाना उसको। तो राधा रानी ने अपनी प्रेरणा से ये चित्रपट उस अंधे बाबा से बनवाया और यही चित्रपट जो है वो वहां पर आज विराजमान है। ये चित्रपट जो है वो अंधे बाबा ने निकाला हुआ चित्रपट है। तो अंधा बाबा ऐसा था, उसका एक सिंह शिष्य था, वो गले में झोली लटका कर उसको मानपुर भेजते थे। तो मानपुर में चार घर की रोटी भिक्षा मांग कर लेके आता था। टिंग टोंग, दरवाजा खोल दिया, सामने शेर खड़ा है, बहुत ही भिक्षां देही। तो उसके झोली में ब्रजवासी लोग डालते थे रोटी, तो चार घर की भिक्षा करके वो पहाड़ पे चढ़ के आता था, अंधे बाबा को देता था, और अंधे बाबा तो उसको अमन या भोग लगा देते इस पिक्चर को, और वो रोटी खाते थे, बचा हुआ रोटी सिंह खाता था। ऐसा शिष्य था उनका, इतने सिद्ध बाबा थे। तो ऐसा ये मोरकुटी और मान मंदिर का लीला है, बहुत सुंदर सुंदर, एक एक लीला बहुत विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। विविध प्रकार की मोर लीला यहाँ पर चलती रहती है, राधा रानी के विविध प्रकार की मान लीला भी चलती रहती है, और ये बहुत अद्भुत स्थान है, बहुत ही एकांत रमणीक स्थान है। यहाँ पर कृष्ण भगवान अनोखी लीला करते हैं। हाँ, इसी सीढ़ी पर हमारे मदन मोहन ब्रजवासी जी रोज बुहारी करते थे। और क्या कहें आपको, शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले तो जिंदगी भर वो भजन गाते थे, महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। देखिए भाव क्या है कि इन सीढ़ियों पर राधा कृष्ण हमेशा ऊपर आते जाते रहते हैं, उनके पैरों में कई कंकड़ कांटे कोई कचरा लगना नहीं चाहिए, इसलिए वो निरंतर साफ करते थे। पेशे से वो बड़े अच्छे गायक थे, बहुत सुंदर आकाशवाणी में उनका गायन भी लगता था हमेशा, हर रोज संध्या लोक गीत कार्यक्रम में 3:30 बजे उनका आकाशवाणी में कई सालों तक 20-30 साल होते होंगे उनके गायन गीत आया करते थे। लेकिन अपना जब व्यवसाय हो गया, पत्नी का देहांत हो गया, तो आके मान मंदिर में बस गए बाबा के पास, और वहीं पर रोज ये भजन गाया करते थे। और केवल गाते नहीं थे, रोज ये मान मंदिर की सीढ़ी रोज पूरी, कितनी कष्ट वाली सीढ़ी आप पता नहीं आपको, उसको रोज बुहारते थे, और रोज शाम को उनके संगीत सभा के अंदर ये गीत गाते थे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। बुहारा मतलब साफ सफाई करना, वो एक अच्छी भाषा का शब्द है, हम लोग बोलते झाड़ू लगाना, सफाई करना, तो अच्छी भाषा में कहते हैं बुहारी करना। लंबी झाड़ू लेकर वहां पर रोज बुहार लगाते थे। तो बाबा की हर कार्तिक में यात्रा निकलती 40 दिन की, तो उस साल 2014 के साल में शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले बरसाने की यात्रा शुरू हुई, तो बरसाने की बात तो पास में थी, और जिंदगी भर उन्होंने यही तमन्ना की थी कि मुझे ये बुहारी करते करते ही मृत्यु आ जाए। हर रोज ये गीत गाया था, इसी भाव से रोज बुहारी करते थे, और राधा रानी से प्रार्थना करते थे कि मुझे बुहारी करते करते ही मृत्यु आनी चाहिए। सारे हजारों यात्री बरसाना का दर्शन करने चले गए, तो बाबा मदन मोहन जी ने कहा कि मैं अभी थोड़ा रुकता हूँ, मेरे बुहारी करके, क्योंकि 3 दिन के बाद तो हम चले जाएंगे यात्रा में, तो बुहारी नहीं होगी मेरे से, और आगे 37 दिन तो हम चलते रहेंगे, बुहारी नहीं करने का मिलेगा, आज ही लास्ट आपसे मौका है, तो आप दर्शन कर लो बरसाने का, मैं बुहारी करता हूँ। तो सब लोग चले गए थे, एक भी व्यक्ति रुका नहीं था, अकेले मदन मोहन जी इस सीढ़ी पर जो कुत्ता दिखता है ना आपको, उसके थोड़ा आगे बुहारी कर रहे थे, और वहीं से नीचे गिर गए, बुहारी करते करते मुंह पे गिर गए। जब ये लोग लौट के आए बहुत घंटों के बाद में, तो देखा कि उनका मुंह खून में लथपथ था और शरीर जान चाल गया था। तो उस दिन शाम के प्रवचन में कहा गया कि देखो राधा रानी है, इसका ये प्रूफ है कि राधा रानी सुनती है, राधा रानी यहाँ विराजमान है, आप इच्छा करो वो पूर्ण करती है, ऐसे प्रवचन में कहा गया। जो दिल से इच्छा करते हैं वो तो हृदय से प्रामाणिक है, सरल है, सरल हृदय है, कपट से मुक्त है, और दिल से राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं, राधा रानी है, उनकी इच्छा पूरी करती है। देखिए रास में, रास पूर्णिमा के समय के पहले रास में अपनी सेवा देने के लिए मदन मोहन जी को राधा रानी ने सेवा में ले लिया, ऐसा प्रवचन में बताया गया। तो ये भाव जो है बहुत जरूरी है, हम उसका नकल नहीं कर सकते, उसके लिए हमको बहुत प्रामाणिक, कपट रहित, काम रहित, द्वेष रहित क्रोध रहित बनना पड़ेगा। नाटक नहीं कर सकते, नाटक टिकता नहीं यहाँ पर फरसाने में। नाटक कर जाएंगे तो फटके पड़ेंगे हमको, बहुत बड़ा दंड मिलेगा हमको। सरल हृदय होगा जो शुद्ध भाव से पहुंचेगा, उसी को राजा रानी अपना बनाएगी, कृपा करेगी उसके ऊपर। तो ये मान मंदिर का दर्शन आपने कराया, फिर मान मंदिर का दर्शन हो गया, प्रार्थना हो गई, फिर कृष्ण को मनाकर हो गया, हाँ? तो यहाँ प्रार्थना कीजिए, मुक्त कीजिए हमको सभी ये नकारात्मक भावनाओं से। ना गर्व चाहिए, ना द्वेष चाहिए, ना काम वासना चाहिए, ना पद चाहिए, ना अधिकार चाहिए, ना धन चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। हम केवल आपका बनना चाहते हैं बस। और इसी जगह पर 1971 में रिचर्ड स्लाविन, जो आज हमारे गुरु महाराज हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, इसी रास्ते पर, जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, उसी रास्ते पर चलते हुए उन्हें बहुत अद्भुत अनोखे साक्षात्कार हुए थे। श्री जी मंदिर से मान मंदिर तक के रास्ते पर चलते समय उनको ये दिव्य साक्षात्कार हुए थे। और यही वो मान मंदिर है जहाँ पर उन्होंने 6 महीने तक निवास किया था। 6 महीने निवास किया था, देखिए प्रणाम कर रहे हैं राधा महाराज जी मान मंदिर पे। इसी प्लेटफॉर्म पर वो 6 महीने रुके थे वहां पर रमेश बाबा जी के साथ और सखी शरण बाबा के साथ में और प्रकाश सिंह के साथ में। इतने लोग यहाँ पर तब डाकू रहा करते थे वहां पर। वहीं पर उन्होंने निवास किया, बहुत तीव्र भजन किया और इसी जगह पर उनको अपने आध्यात्मिक जीवन का सर्वोत्कृष्ट साक्षात्कार प्राप्त हुआ। वहां के जो ब्रजवासी है वो बताते हैं कि जब ये आए थे तब वो सारे ब्रजवासी उस समय बच्चे थे, 10 साल के 15 साल के। अभी सब बुजुर्ग हो गए, 71 हो गया ना वो, कितने साल हो गए उसको। महाराज भी 19-20 साल के थे, वो भी बच्चे थे उस समय। तो कहते हैं कि जब ये आए थे यहाँ पर तो वो उनकी आंखों में ऐसा भाव था कि कुछ खोज रहे हैं, ऐसे उनकी आंखों में भाव था। और बाद में जब ये यहाँ से गए वापस लौट के आए तो दिख रहा था कि जो ढूंढ रहे थे उसको मिल गया उनको। तो यही वो भूमि है मान मंदिर की, जहाँ पर हमारे गुरुदेव को दिव्य साक्षात्कार राधा रानी की कृपा से, मान बिहारिणी की कृपा से प्राप्त हुआ है। और यही वो महात्मा है परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज, सबसे निडर, सबसे निर्भय, हाँ पक्कड़ संत हैं, बिल्कुल बिना डर के सेवा करते हैं। अभी 1952 में यहाँ पर आए थे, कितने हो गए, 48 और 20, हाँ 68 ईयर्स हो गए उनको यहाँ पर भजन करते हुए। इतने इतने संघर्ष किए उन्होंने, वो मान मंदिर के बचाव के लिए डाकू रहा करते थे वहाँ पर, डाकुओं का वो माल वहाँ रखते थे, उनको कितनी बार बंदूक दिखाई उन्होंने, लेकिन कभी वहाँ से हिले नहीं। तो डाकू ने बंदूक दिखाई ना उनको, तो इन्होंने कहा मार दो, मरने के लिए तो आए। अभी साधु ये होता है ना, साधु को क्या डर दिखाएंगे आप, जो मृत्यु से डरता नहीं है उसको और क्या डर दिखा सकते। बंदूक दिखाया, बोलो मारा, चले जाओ यहाँ से, चलो क्या करोगे, तो मार दूंगा आपको, मार दो बिल, मार दो, राधा रानी की इच्छा है तो मर जाएंगे उनके चरणों में, मरने के लिए तो आए। अरे डाकू चले गए, ये नहीं चले गए, ये वही बस गए, डाकू लोगों को जाना पड़ा वहां से। और ये परिवार है वो, ये लक्ष्मी दीदी है, लच्छो दीदी कहते हैं हम प्रेम से उनको। हाँ इसी किचन में बैठकर हमने, राधानाथ महाराज जी ने, हमारे गुरु भाइयों ने, बहनों ने कई बार रोटी पाई है, हाथ की रोटी। महाराज जी कहते हैं लक्ष्मी दीदी की हाथ की रोटी जो है ना विश्व में सबसे स्वादिष्ट और परम भाग्यशाली रोटी है, जो यहाँ पर बैठ के इनके हाथ से हाथ की रोटी पाता है वो सबसे बड़ा भाग्यवान जीव है। तो ये लक्ष्मी दीदी है, ये हम इनको करीब 35 साल से जानते हैं और अनंत बार इनके घर पर रहकर हमने भोजन किया है प्रेम का। यहीं पर हमने कैंप लगाया था आंखों का, क्या कहें आपको। तो अभी आपको यहाँ पर आज की कथा को विश्राम देते हैं और आपको धोनी वो गुफा का वीडियो दिखाते हैं।